गुरु भक्ति योग, आध्यात्मिक मार्ग कांटों वाला और सीधी चढ़ाई वाला मार्ग है। प्रलोभन आपके ऊपर हमला करेंगे, उनमें पतन की संभावना है। अतः ऐसे गुरु के पास जाएं जो इस मार्ग के जानकार हो। गुरु का चिंतन करने से सुख, भीतर की शक्ति, मन की शांति एवं आनंद प्राप्त होता है। गुरु चिंतन से, गुरु चर्चा से उनके दैवी स्वभाव का संचार हमारे जीवन में होता है। गुरु की प्रशस्ति मानो ईश्वर की प्रशस्ति है। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार सद्गुरु की भक्ति द्वारा ही ईश्वर साक्षात्कार करना है। सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किए हुए गुरु कलयुग में तारणहार है। आध्यात्मिकता की खान के समान गुरु के सहाय के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। गुरु की सेवा के बिना पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना यह समय का दुर्व्यय है। चाहे कितने ही दर्शन शास्त्र के ग्रंथ पढ़ो, सारे विश्व का प्रवास करके व्याख्यान करो, हजारों वर्षों तक हिमालय की गुफा में रहो, वर्षों तक प्राणायाम करो, जीवन पर्यंत शीर्षासन करो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। रामायण में कहा है, गुरु बिन भव निधि तरही न कोई, चाहे विरंचि शंकर सम होई। स्वामी लीलाशाह जी महाराज कहते हैं कि अविद्या ने भूल भुलैया करके जीवन को भ्रम में डाल दिया है, अतः यह जीव स्वयं को दुखी बना रहा है। जहां सागर ही नहीं है, वह सागर में ही गोता खा रहा है। स्वामी कहते हैं कि हे जीव, तू अंतर में झांक कर तो देख। वे दृष्टांत बताते हैं कि एक बार एक राजमहल में 5 वर्ष का राजकुमार सोया हुआ था। एक भील ने अवसर देखकर धन के लोभ में उस राजकुमार को उठा लिया, जंगल में जाकर उसके सब आभूषण ले लिए और उस राजकुमार को अपने बेटों के साथ पालने लगा। राजकुमार भील के बच्चों के साथ खाते पीते और खेलते खेलते उन जैसा ही हो गया। जब राजकुमार युवावस्था में आया तो वह भी भीलों जैसा व्यवहार और काम करने लगा, अर्थात हिंसा, चोरी, पाप, जीवों की हत्या करने लगा और अपने को भील ही समझने लगा। एक दिन वह घूमते घामते शिकार करते करते घोर जंगल में पहुंच गया। रास्ते में उसे बहुत प्यास लगी। पानी की खोज में इधर उधर जांच की तो उसे एक महात्मा की कुटिया नजर आई। तुरंत ही कुटिया में जाकर उसने उन महात्मा को प्रणाम किया एवं प्रार्थना की कि महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दीजिए। पहले वे महात्मा जब उस राजकुमार के राज्य में जाते थे तब उन्होंने उस राजकुमार को अच्छी तरह से देखा था, अतः वो राजकुमार को देखते ही उसे पहचान गए कि यह खोया हुआ राजकुमार है। महात्मा ने उसे बैठाया और कहा, मैं तुम्हें पानी तो पिलाऊंगा, परंतु तू पहले मुझे जवाब दे कि तू कौन है। लड़के ने जवाब दिया, मैं भील हूं। महात्मा ने कहा, तू भील नहीं है, राजकुमार है, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं, तू भीलों के साथ पल बढ़कर भीलों लोगों जैसा काम करने, अपने को भील मानने लगा है, तो अपने आप को पहचान कि तू कौन है, अपने वास्तविक स्वरूप को तू याद कर, जब तुझे तेरी सच्ची पहचान होगी तब तू भीलों के जीवन को छोड़कर राजमहल में राज्य सुख भोगेगा। राजकुमार ने महात्मा के वचन सुनकर अपना बचपन याद किया तो उसे अपने माँ बाप, राज्य, राज दरबार, सेवक वगैरह याद आ गए और तुरंत ही स्मरण हुआ कि मैं भील नहीं हूं, मैं निस्संदेह राजकुमार हूं। अब तक अज्ञानता में व्यर्थ ही अपने को भील समझकर दीनहीन होकर भीलो जैसा तुच्छ जीवन जीता था। महात्मा ने तुरंत ही राजा को संदेश भेजा कि आपका खोया हुआ राजकुमार मिल गया है। राजा ने तुरंत ही राजकुमार के वस्त्र, आभूषण, घोड़े, रथ वगैरह भेजे। फिर राजा के आदमियों के साथ राजकुमार राजमहल में गया। वह राजपद पाकर आनंद में रहने लगा। इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि इस जीव रूप राजकुमार को देहध्यास अर्थात भ्रांति के कारण काम, क्रोध, लोभ वगैरह भीलों ने अपने वश में करके संसार रूपी घोर वन में ले जाकर उसके दैवी संपदा के सद्गुण रूपी आभूषणों को उतार अपने जैसे ही बना दिया है। यह जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर भ्रांति से अपने को भील मानकर अनेक प्रकार के कुकर्म कर रहा है। अज्ञानता के कारण वह समझ रहा है कि मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं पापी हूं और मैं दुखी हूं। इस प्रकार अज्ञानी जीव अपने को करता, भोगता, सुखी, दुखी मानकर संसार रूपी जंगल में भटक रहा है। जब वह किन्हीं पुण्यों के प्रताप से किन्हीं आत्मवेता सदगुरु की शरण में जाता है तब सदगुरु उसे ज्ञान का उपदेश देते हैं कि तू देह नहीं है, तू अज्ञानी नहीं है, तू जाति वर्ण वाला नहीं है, तू कर्ता भोक्ता नहीं है, तू पाप पुण्य के संबंध वाला नहीं है, तू शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप चिदघन स्वरूप को भूलकर इस अवस्था में आया है। जब तू अपने वास्तविक स्वरूप को जानेगा तभी सुखी होगा और सच्ची शांति पाएगा। सद्गुरु के ऐसे उपदेश से वह जीव देहध्यास की भ्रांति को हटाकर अपने साक्षी रूप को, अभिन्न एक रूप ब्रह्म की अद्वैत निष्ठा को प्राप्त करके सुख सागर में ब्रह्म में निमग्न हो जाता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है।